आगे देखें, फाइन आमनु भी मिसली मा आमन तुम भी ही फका देहता दो। ये बड़ी अहम आयत है। फाइन आमनु, फिर अगर वो ईमान ले आए। कौन ईमान ले आए? कहा तो उनको जा रहा है, यहूदो नसारा को, कि ये यहूदी अगर ईमान ले आते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि बस मुंह से कह दिया कि हम ईमान ले आए, जैसे हमारा होता है। मिसाल दे दी अल्लाह ताला ने किसके जैसा ईमान रिक्वायरमेंट है अल्लाह की, कौन सा ईमान रिक्वायर्ड है आखरत में कामयाबी के लिए, कौन सा ईमान क्राइटेरिया है, ये देख लें यहां पे। भी मिसली मा आमन तुम भी ही, जैसा ईमान लाए तुम साथ इसके, साथ किसके, इस किताब के, इस कुरान के। ऐसा ईमान चाहिए तो फकादेह तदऊ, तो बिला शुबा वो हिदायत पा गए। ऐसा ईमान होगा तो हिदायत याफ्ता है। आयत 135 देखें, निकालें आयत 135। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वकालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, तुम यहूदी या नसरानी हो जाओ तब तुम हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? अल्लाह के नजदीक ये इनकी अपनी मुंह की बातें हैं, अल्लाह के नजदीक क्या चाहिए? ईमान, और वो भी एक खास दर्जे का ईमान। ऐसे नहीं कि अपने मुंह की बातें बोली में आम ईमान ले आए बस ठीक है, नहीं। ऐसा ईमान चाहिए जैसे तुम ईमान लाए। तुम से मुराद कौन है? आमन तुम किसको अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बनाया है, किसको मिसाल बनाया है, किसका ईमान? ऐसा ईमान चाहिए जैसे एक चीज दिखाई जाती है ना, ऐसी चीज चाहिए मुझे। अल्लाह ताला ने क्या बता दिया मुझे, कैसा ईमान चाहिए? ये जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए और सहाबा कराम ईमान लाए। अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक जो ईमान लाए उनके लिए इनको क्राइटेरिया बना दिया कि अल्लाह के नजदीक जो ईमान एक्सेप्टेड होगा ना वो ये ईमान है। क्यों? वो लोग ऐसा ईमान लाए थे जिसमें कोई कमी ज्यादती नहीं थी, जिसमें खलूस था, जिसमें निफाक नहीं था। तमाम फरिश्तों पे, अंबिया पे, अल्लाह की जात पे, उसकी सिफात पे, तमाम तालीमात पे, अल्लाह के तमाम हुक्मों पे, हर चीज पे वो ईमान ऐसे लेकर आए जैसे उनको कहा गया वैसा ही ईमान लेकर आए, कोई कमी बेशी नहीं थी। ये वो ईमान लाए थे कि सुभान अल्लाह, जब इन यहूदियों को और लोगों को कहा गया वाइदा कीला लहुम आमिनू कमा आमन नासु कालू अनुमिनू कमा आमन सुफहा, आयत नंबर 13 में हम ये पढ़ चुके हैं। जब इनसे कहा जाता है ईमान लेकर आओ तो कहते हैं ऐसा ईमान लेकर आए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लेकर आए। उस वक्त में भी वो उनको बेवकूफ लगते थे, आज तो बिल्कुल ही लोगों को पागल लगते हैं, दीवाने लगते हैं, भटके हुए लगते हैं। वैसा ईमान अगर किसी का हो अव्वल तो नजर ही नहीं आता। कैसा था सहाबा इकराम का ईमान, कुछ पता है आपको? अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमें ऐसा ईमान देते हैं कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाए तो टल जाए। उनका ईमान नहीं हिलता था, उनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था। ऐसा ईमान अल्लाह ताला को चाहिए तब तुम हिदायत याफ्ता हो। तो हम कौन से ख्यालात में हैं, हम कौन से ख्यालात में हैं? ऐसा ईमान नहीं लाते तो फिर हम जितना मर्जी कह दें हम बड़े ईमान वाले, हम ये हम वो, नहीं, हिदायत याफ्ता फिर भी नहीं है। हिदायत पे होने के लिए तो ऐसा ईमान लाना जरूरी है। फिर बताएं हमारी हिदायत का क्या हाल है? इनका ईमान प्योर था, उसमें कोई खोट नहीं था। इनका ईमान ऐसा था कि दीन से ज्यादा इनको कोई चीज प्यारी नहीं थी, अपने ईमान से ज्यादा इनको कुछ प्यारा नहीं था, और इनको दुनिया की जिंदगी से ज्यादा आखरत की मोहब्बत थी। इनका ईमान वो था जिसमें कौलो फेल का तजाद नहीं था कि कहा कुछ और किया कुछ। इनका ईमान वो था जो समय ना वाताना वाला था, इनका ईमान वो नहीं था कि जो सुन लिया अब मानना हमने थोड़ी है। इनका ईमान वो है कि हजरत बिलाल को देखें कि तपती दोपहर में जब जमीन बिल्कुल रेत ऐसी हो जाती थी जैसे कि कोयला है, तो उस वक्त इनको उस जमीन पे लिटा के और घसीटा जाता था और ऊपर पत्थर भी रख दिए जाते थे, फिर भी एक ही लफ्ज इनकी जुबान पे होता था, आहद आहद आहद। उमैया इनसे कहता था, खुदा की कसम तेरे साथ यही सलूक करता रहूंगा, तू चाहे मर जाए या फिर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर कर और लात और उज्जा की इबादत कर। आखिरकार तो वो सिर्फ ये कहने लगा कि एक दफा हमारे खुदाओं का नाम ले ले मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक दफा नाम ले ले, क्योंकि वो उनको टॉर्चर कर करके भी थक गए थे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे थे। हजरत उम्मे सलेमा का ईमान देखें, फरमाती थी कि मैं नहीं जानती कि इस्लाम लाने के बाद किसी घराने पे भी इतनी मुसीबत पहुंची हो जितनी अबू सलेमा के घराने को पहुंची। ये अबू सलेमा की बीवी है ना, आप फरमाती थी कि जब अबू सलेमा ने मदीना की तरफ हिजरत का इरादा किया तो मुझे ऊंट पे बिठाया, मेरे बेटे सलेमा को मेरी गोद में दे दिया, फिर वो ऊंटनी को हांकते हुए लेके जा रहे थे तो जब बनी मुगीरा यानी जो मेरा कबीला था उनके लोगों ने देखा तो ऊंट की नुकेल उनके हाथ से छीन ली और मुझको उनसे ले लिया, अबू सलेमा के कबीला बनू। अब्द असद ने यह देख के कहा कि जब तुमने अपने कबीले की औरत को ले लिया है हमारे आदमी से तो हम भी अपने बेटे यानी सलेमा को इसके पास नहीं छोड़ेंगे, तो मेरे बेटे सलेमा को दोनों तरफ से लोगों ने खींचना शुरू कर दिया, यहां तक कि बच्चे का हाथ उतर गया और उसको बनी अब्द असद के लोग यानी इनके जो शौहर हैं उनके कबीले के लोग ले गए और मुझको बनी मुगीरा यानी जो इनका अपना कबीला था इनके लोगों के पास छोड़ दिया गया और मेरे शौहर अबू सलेमा मदीना चले गए, मुझ में और मेरे बेटे और मेरे शौहर में जुदाई होगी, एक फैमिली है और देखें कोई कहीं है और कोई कहीं। कहती मैं रोजाना सुबह को निकलती थी और मैदान में बैठ के शाम तक रोती रहती थी, एक साल तक ऐसा ही होता रहा, वो सुबह जाती सुबह से जाके शाम तक वहां पे बैठ के रोती रहती। और सोचें कि इन लोगों ने कुर्बानियां दी, दीन नहीं छोड़ा। हम दीन की तरफ आने की वजह से कोई जरा सी भी कांटा भी चुभ जाता है ना तो इतने इतने आंसू रोते हैं कि हाय हाय हम दीन की तरफ आए थे ना तो हमें ये तकलीफ पहुंच गई। बदर में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को जिहाद की दावत दी और निकलने को कहा तो हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो अपनी वालदा के पास आए, उनकी वालदा बहुत बूढ़ी हो गई थी, उनके खावन पहले ही फौत हो चुके थे, बुढ़ापे की वजह से उनका समझ ले वाहिद सहारा हारिसा थे और जिनसे इतनी उनको मोहब्बत थी। वैसे तो सारी माएँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती हैं लेकिन इकलौती औलाद की वजह से और फिर शौहर भी नहीं है तो फिर इतनी उनको मोहब्बत थी कि लोग उनकी मोहब्बत की अपने बेटे से जो मोहब्बत थी उसकी मिसालें देते थे और बेटे की जरा सी तकलीफ पे तड़प उठती थी। सर्दी के मौसम में जरा सी सर्दी पे परेशान हो जाती है कहीं मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए और गर्मी में इससे परेशान हो जाती है कि कहीं मेरे बेटे को लू ना लग जाए। आप इससे अंदाजा कीजिए कि कितनी ज्यादा उनको मोहब्बत होगी अपने बेटे से। और ये वो दिन था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की दावत दी कि बेटा अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ और देखते हुए कहता है कि मुझे जाने की इजाजत दें। तो माँ कहती मेरी तो आरजू है कि मैं तुम्हारी शादी कर लूं और तुम्हारी औलाद हो फिर मैं उससे जी बहलाऊं, तो मेरे दिल के अंदर तो ये अरमान है, बेटा जिहाद पे जाने की इजाजत चाह रहा है। बेटा कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो माँ कहने लगी कि बेटे मेरे से तेरी जुदाई जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, तू मेरे पास ही रह जा। इधर हारसा अपनी वालदा से बार बार इजाजत के लिए इसरार कर रहे हैं, उनके हाथ चूम रहे हैं, सर चूम रहे हैं और कह रहे हैं अम्मा जान आप खुशी से इजाजत दे दें। जब बेटे ने बहुत ही इसरार किया, बहुत हद से बड़ा इसरार, तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे ठीक है तुम जाना चाहते चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देती, लेकिन सुन लो तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे चैन नहीं आएगा। फिर उठी, अपने बेटे को अपने हाथ से कपड़े पहनाए, तलवार उसके गले में लटकाई, फिर बेटे की पेशानी पे बोसा दिया और उनको रवाना कर दिया। जब मुसलमान बदर के मकाम पे पहुंचे ना, तो वहां पे कुएं के पास पड़ाव डाला, और कुरैश ने भी अपने लाओ लश्कर के साथ वहां पे पड़ाव डाला हुआ था। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, अभी सफे बांध रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्बाब बिन मुनज़र के मशवरे पे आगे बढ़ के ये कहा कि ये पानी के कुएं पे कब्जा कर लिया जाए, और उसकी हिफाजत के लिए एक अंसारी को मुकर्रर किया कि कोई दुश्मन इसमें जहर ना मिला दे। तो आपको पता है कि बदर के वहां पे कुएं के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, तो और उनको कहा गया था कि कोई भी दुश्मन का आदमी ना इस कुएं के पास ना आए, और इसमें यहाँ पे जिन सहाबी को मुकर्रर किया गया था वो अंसारी एक सहाबी थे जो बहुत तीर चलाने में बहुत महारत रखते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारसा को बड़ी प्यास महसूस हुई, उन्होंने कुएं का रुख किया, वहां पहुंच के कुएं से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाना चाहते थे कि वो जो हिफाजत पे खड़े हुए थे सहाबी, उन्होंने समझा ये दुश्मन का आदमी है और ये शायद कुएं में जहर मिलाने के लिए आया। कहने लगे नाऊज़ु बिल्ला, इस्लाम का ये दुश्मन हमारे कुएं को खराब करने के लिए आया। उन्होंने अपने तीर को कमान में रखा और तीर चला दिया, तीर सीधा उनके हलक में जाके लग गया। तो हारसा रजी अल्लाह ताला उन्होंने चीख मारी और जमीन पे गिर पड़े। मुसलमानों ने इनको दुश्मन का आदमी समझा, किसी ने उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की, और हारसा ने तीर निकालने की कोशिश की मगर उनकी मौत आ चुकी थी, शारक कट चुकी थी, खून का फवारा बह रहा था, और इसी हालत में वो अपने रब से जा मिले। जब इनकी मौत वाकई हुई तो जो कुएं पे जो मुहाफिज सहाबी थे वो आगे बढ़े अपने तीर का शिकार एक मुसलमान को देख के, फिर वो बहुत परेशान हुए कि ये क्या हुआ, मैंने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, मैं तो उनको दुश्मन का आदमी समझा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके खबर दी, आपने उन अंसारी सहाबी को माफ़ कर दिया कि इनका कोई कसूर नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने देखे मुसलमानों को फतह दी, मुसलमान खुशी खुशी वापस मदीना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हज़रत बिलाल को और हज़रत ज़ैद को फतह की खुशखबरी दे के मदीना भिजवा दिया था। जब मुसलमान वापस आए तो अहले मदीना ने मुजाहिदीन का बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया, औरतें बच्चे बूढ़ी औरतें अपने खामदों बापों बेटों के इंतज़ार में थी। तो जो रिश्तेदार थे वो इतने वालेहाना तौर पे अपने अजीजों का इस्तकबाल कर रहे थे, इन्हीं इस्तकबाल करने वालों में उम्मे हारसा भी थी। तो मुसलमान मुजाहिद मदीना में जब दाखिल हुए, बच्चे आगे बढ़ के अपने बापों को सलाम कर रहे हैं, उनसे हाल अहवाल कर रहे हैं, तो उम्मे हारसा एक तरफ इंतजार में खड़ी हैं और कि कब उनका बेटा आए और उसको सीने से लगाएं। तो काफले आते रहे और उनके पास से गुजरते रहे, लेकिन इनमें उनको हारसा नजर नहीं आया। तो दिल में तरह तरह के वसवास थे, हथियार थे। आखिर को एक सहाबी का रास्ता रोक के खड़ी हो गई और पूछा कि तुम हारसा को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ, मगर तुम्हारा हारसा से क्या ताल्लुक? कहने लगी मैं उसकी माँ हूँ। सहाबी ने कहा तो फिर अपने बेटे पे सब्र करो, तुम्हारा बेटा कत्ल हो गया। तो उम्मे हारसा ने जब ये खबर सुनी और शहीद का मकाम और मर्तबा याद आया और कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं शहीद की माँ हूँ, मेरा बेटा है जन्नती है, तो कि मेरा बेटा मेरी सिफारिश करेगा, उसको इतना बड़ा मकाम मिला, तो भी इख्तियार कहने लगी मेरा बेटा शहीद है, मगर मैं तो उसको शहीद नहीं समझता। सहाबी ने जवाब दिया, पूछा क्यों? कहने लगे कि वो तो उसको तो काफिरों ने कत्ल नहीं किया, उसको तो मुसलमान के साथ का तीर लगा और वो कत्ल हुए, और जंग से पहले ही कत्ल हो गए। तो इस बूढ़ी माँ ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ का रुख किया कि वो कहाँ है? सहाबी ने कहा वो देखो अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। वो दौड़ती भी आगे बढ़ी, आंखों से आंसू जा रही हैं और गम का पहाड़ इन पे टूटा कि जवान इकलौता बेटा शहीद हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक खातून आ रही है, रुक गए। वो पास आई, पूछा कौन है? کہنے لگی ام حارثہ. فرمایا ام حارثہ کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے حارثہ سے کتنی محبت تھی، سارا مدینہ میری محبت سے خوب واقف ہے، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا قتل ہو گیا. اللہ کے رسول مجھے بتائیں قتل کے بعد حارثہ کہاں ہے، میرا لخت جگر کہاں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر اور شکر کروں گی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے میں خوب روؤں، اتنا روؤں کہ اس سے پہلے اس کی کبھی مثال لوں، حتیٰ کہ مجھے قرار آ جائے. اللہ کے رسول نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ام حارثہ کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ وہی جو آپ مجھ سے سن چکے ہیں، اگر جنتی ہے تو صبر کروں گی اور شکر کروں گی، اور جنتی نہیں ہے تو روؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت بھری نظروں سے دیکھا، ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے تڑپ رہی ہے پھر بھی صبر کر رہی ہے. وہ اگر اس کے سامنے ہوتا تو اس کے گلے لگاتی، اس کا منہ چومتی، اپنے سے کبھی جدا نہ ہونے دیتی. تو وہ بے چینی سے کھڑی انتظار کریں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کا اپنے بیٹے سے محبت اور انکساری دیکھا، فرمایا ام حارثہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، رب العزت نے اس کو بہت ساری جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، خوش ہو جا، تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا. تو جب بوڑھی عورت نے یہ خوشخبری سنی تو ان کا سر جھک گیا عجز و انکساری سے، چہرے پہ تازگی آ گئی، آنسو رک گئے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں شہید کی ماں بن گئی، میرے بیٹے کو جنت الفردوس کی خوشخبری مل گئی، میری خوش قسمتی کے کیا کہنے، مجھے نہ مال غنیمت چاہیے، نہ دنیا کی کوئی تعریفیں چاہیے، نہ کوئی صلہ چاہیے، یہاں تو رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی چاہت اور اس کی محبت ہے جو مجھے چاہیے صرف. یہ تھا ان کا ایمان. یہ آپ کو سارا سنانے کا مقصد یہ کہ ایمان کیسا تھا ان کا. ہم کبھی سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان چاہیے، ہر چیز قربان کر کے بھی کیا چاہیے، بس اللہ تیری خوشنودی چاہیے، تیری چاہت چاہیے، تیری محبت چاہیے، تیری رضا چاہیے، اور دنیا کا کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی تعریفیں نہیں چاہیے، کوئی صلہ کسی سے نہیں چاہیے. ایک اور عورت کی بات بتاتی ہوں کہ دیکھو ان لوگوں کے لیے آخرت کتنی بڑی چیز تھی. ایک کالی عورت تھی، لونڈی تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شفا کے لیے دعا کی درخواست کی. کہنے لگی میری زندگی اجیرن ہو گئی، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پہ ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں لوگوں کے پاس اچانک مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے ہوش ہی نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے شفا کے لیے دعا کروں. تو عورت نے سوچنا شروع کر دیا، اپنے حالات پہ، اپنی بیماری کو دیکھا، اتنی تنگ آئی بھی تھی بیماری سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا. اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کس کو اختیار کرے، صبر کو یا دنیاوی آرام کو. سوچا، غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے، اور میں تو جنت کیوں نہ اپنے لیے مانگ لوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں. اور پھر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اے اللہ کے رسول میں صبر سے کام لوں گی، بس آپ میرے لیے یہ دعا کر لیں کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میں بے پرد ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا کریں مجھے بے پرد نہ کرے. یہ پتہ ہے بخاری اور مسلم میں یہ روایت، ان کے لیے کیا تھا، دنیا ان کو کیسی نظر آتی تھی اور آخرت کیسی نظر آتی تھی بتائیں. وہ جو عینک انہوں نے لگائی ہوئی تھی نا، جو گلاسز انہوں نے لگائی ہوئی تھی، وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہیں جو ہم نے لگائی ہوئی. ہمیں دنیا بہت بڑی نظر آتی ہے اور آخرت بہت چھوٹی اور دور نظر آتی ہے. ان کو آخرت بہت قریب نظر آتی تھی اور دنیا بہت چھوٹی اور حقیر نظر آتی تھی. بہت فرق ہے ہمارے دیکھنے اور ان کے دیکھنے میں، اور بہت فرق ہے ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں. جب سوچ ہی بدل گئی तो अमल भी बदलेगा ना। इसीलिए इस छोटी सी और हकीर सी और थोड़ी सी दुनिया का कोई नफा, कोई नुकसान, कोई इज्जत, कोई जिल्लत उनके लिए कोई बिग डील नहीं थी। कोई कुर्बानी, कोई बिग डील नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनको मोहब्बतें नहीं थी? क्या उनके रिश्ते नहीं थे? क्या उनको आसाइशें नहीं चाहिए थी? उनकी भी ऐसी इंसानी जरूरियात थी जैसी हमारी हैं। उनकी भी औलादें इसी तरह उनको प्यारी थी जैसे हमें हैं। इसीलिए मैंने इन खातून की, उम्मे हारसा की मोहब्बत की पहले आपको बात बताई है, ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं वो तो कोई एलियन लोग थे जिनको ना किसी से मोहब्बत होती थी, ना उनके दिल में कोई जज्बात थे। सारी मोहब्बतें तो बस हमें ही हैं अपने बच्चों से। हाँ नहीं, वो भी हमारे जैसे ही इंसान थे और उनकी भी ख्वाहिशात थी। लेकिन देखो उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कैसे शिफ्ट कर दिया था। आखिरत में लेना था उसने, उन्होंने सब कुछ। हमने सब कुछ कहाँ लेना इस दुनिया में? हमें सब यहां पे चाहिए। वहां पे मिले ना मिले, मिल गया तो ठीक है, ना भी मिले तो चलो यहां तो मिल जाए ना। लेकिन वो क्या कहते थे, यहां मिले ना मिले बस वहां जरूर मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ऐसा ईमान लेकर आओ, मुझे तो ये ईमान चाहिए। ये ईमान लाओगे तो तुम हिदायत याफ्ता हो, और ये ईमान नहीं है तो हिदायत नहीं है तुम्हारे पास अभी भी। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, मगर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो ईमान वाले नहीं है, वो तो मुनाफिक हैं, शुरू की आयात में ना। तो अपने आप को खुद ही ईमान वाला कह देने से ईमान वाला नहीं कोई हो जाता। ये हमारे बोलने से नहीं हम ईमान वाले बन जाते, हमारे दावों से नहीं बनेंगे। फरमाया ना, वमिन अन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह का फैसला है, वो मोमिन नहीं है। तो ईमान जो अल्लाह को मतलूब है, जो वहां पे चाहिए, अगर हमारे पास वो ईमान नहीं है तो हमारे दावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितना ही स्ट्रांगली इस चीज को ये कहूं कि मेरा ईमान है, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता। इसीलिए इन लोगों की जो जिंदगियां हैं हमें सामने रखनी है, ये लोग कैसे थे। क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि ये लोग कैसे थे, इनकी जिंदगियां कैसी थी, तभी तो हम इनके जैसा ईमान ला सकेंगे। क्योंकि ये हैं हमारे रोल मॉडल्स। हमें इसीलिए सहाबा के हालात पढ़ने चाहिए, और पढ़ाए जाएं तो उस पर एतराज नहीं करना चाहिए कि सहाबा के हालात पढ़ के हमने क्या करना है, हमें क्यों इनकी बातें बताई जा रही हैं। नहीं, ये तो इनके जैसा ही तो हमने ईमान लाना है। ये आम लोग थे, इनके पास कोई वही नहीं आती थी। अंबिया के पास तो वही आती है, आती थी, मगर इनके पास तो कोई वही नहीं आती। ये मेरे और आपके जैसे ही इंसान थे ना, या नहीं? कौन सा फरिश्ता इनके पास आता था, फिर भी इनके ईमान का ये लेवल था। और अल्लाह ताला किसी से भी वो चीज नहीं एक्सपेक्ट करते जो कि उसकी ताकत से बाहर हो, जो वो ना कर सके। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब हमसे ऐसा ईमान को रिक्वायरमेंट रखा हमारे लिए, तो इसका मतलब हम कर सकते हैं, तभी हमसे ये मांगा गया। और कुरान के मतलूब भी ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, और इसी तरह सूरह फतह के एंड में भी सहाबा कराम की सिफात बयान की गई कि वो कैसे थे, आपस में उनके ताल्लुकात कैसे थे। आपस में इतने एक दूसरे से शफीक और रहीम थे, और काफरों के लिए क्या थे, फर्म थे, सख्त थे। ये नहीं कि काफरों के सामने बस इस तरह से हो जाएं, नरम पड़ जाएं कि हाँ जो ऐसे आप कहते हैं हम भी वैसे ही कर लेंगे, आपके रंग में रंग जाएंगे। नहीं, वो लोग पार्ट टाइम मुसलमान नहीं थे जैसे हम आज पार्ट टाइम मुसलमान हैं। फुल टाइम नहीं है ना, सारा दिन तो अपनी मर्जी से गुजारना, बस थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए, या बस थोड़े चंद एक कुछ कुछ काम कर लिए और हमने सोचा हम बहुत ईमान वाले हैं। तो पार्ट टाइम मुसलमान है, تھوڑی دیر کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں. وہ ہوتی نا چیپیاں جس کو کہتے ہیں, چیپیاں لگائی ہوئی ہیں ہم نے ایمان کی, پیچ ورک, پیچز. ایک خانہ دین کا بھی رکھ لیا تاکہ دیندار کہلائیں لوگوں کی نظروں میں, دیندار بن جائیں. تو اس لیے ایک پیچ دین کا بھی لگایا ہوا. یہ دین نہیں مطلوب, یہ دین, ایسا ایسا ایمان لاؤ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پھر اگر وہ منہ موڑیں تو وہ شقاق میں ہیں. شقاق کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ضد, مخالفت, ضدم ضدہ, جیسے ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں, میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جیسے کسی سے اتنا بیر ہو جائے, اتنی نفرت ہو جائے کہ بس اب وہ ٹھیک بھی کہے, سیدھی بھی بات کہے تو میں نے نہیں ماننی. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ایمان نہیں لاتے نا, ان کو کہا جا رہا ہے جن کو ایمان کے لیے دعوت دی گئی, یہود و نصارہ کو, کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں, ان کو کہا گیا آؤ ایمان لے آؤ, اور ایسا ایمان لے کر آؤ, یہ ہیں تمہارے سامنے لوگ, ان کے جیسا ایمان لاؤ. تو اگر یہ نہیں لاتے تو یہ ضد میں ہے. یہ نہیں ہے بات کہ ان کو سمجھ نہیں آیا, بس ماننا ہی نہیں. جب انسان نے فیصلہ کر لیا میں نے نہیں ماننا, تو پھر کون اس کو منا سکتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے نبی پھر ان قریب کافی ہوگا تجھ کو اللہ ان سے. اے نبی پھر آپ نہ اتنا دل تھوڑا کریں, آپ نہ غم کھائیں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ مطمئن ہو جائیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتنی فکر کرتے تھے, کتنی پریشانی کرتے تھے نا. تو اے نبی ان کے مقابلے میں اللہ ہی آپ کو کافی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی, لوگ ان کے گھر میں داخل ہو گئے تھے, تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے, روزہ تھا ان کا اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. تو جب ان کو شہید کیا گیا تھا نا, تو قرآن کھلا ہوا تھا اور ان کا خون کا فوارہ نکلا اور ان الفاظ پہ جا کے پڑھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, واقعی اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے. جس طرح ان کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. تو دیکھیں اور بھی آیتیں تھیں, کوئی اور پیج ہو سکتا تھا, کوئی اور مصحف میں کسی جگہ سے بھی وہ پڑھ رہے ہو سکتے تھے, لیکن یہاں پہ ان کا خون گرا اور اس کا جو دھبا پڑا ہے, آج تک بھی وہ مصحف جو ہے نا ٹرکی میں ایک میوزیم ہے, وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس میں اسی طرح وہ خون کا دھبا ہے. سبحان اللہ, اللہ واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے مخلص ہوتے ہیں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے, تو کافر آگل تھے, سروں پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مشرکوں کے قدموں کو, کہ اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے نا تو یہ ہمیں پا لیں گے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ, ان میں سے اگر کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً ہمیں بھی دیکھ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جن کے ساتھ اللہ ہو, کیونکہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کو. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا, تو پھر کوئی اس کو پریشانی, کوئی اس کو فکر یہ نہیں رہتی, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے, نہ اپنا بچاؤ ہے نہ کچھ, لیکن میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اے نبی آپ کو اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی. اللہ سب سن رہا ہے, جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں, جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں, جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں, ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے, سب جانتا بھی ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے بڑھ کے. اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون سا رنگ ہے؟ یہ کون سا رنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ کہا؟ हम ये सोचते हैं कि शायद ग्रीन कलर जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर यही समझा जाता है ना, उसको अल्लाह का रंग शायद समझा जाता है, या क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में वहाँ पे ग्रीन कलर है तो उसको हम समझ लेते हैं, या हम और कुछ रंग हैं जिनको हमने समझा हुआ है, काला रंग ये काबे के गिलाफ का रंग है, ये शायद है अल्लाह का रंग। ऐसा नहीं है। अल्लाह का रंग का मतलब क्या? अल्लाह की बंदगी का रंग, ईमान का रंग, दीन का रंग। और ये रंग वो चीज होती है, जब रंग चढ़ता है ना किसी चीज पे तो नोटिसेबल होता है ना। रंग क्या चीज होती है? नजर आने वाली चीज होती है ना, या छुपी हुई चीज होती है, नजर आती है। इसी तरह मोमिन पे जब ईमान का रंग चढ़ता है तो उसके चेहरे से, उसके हाल हुलिये से, उसकी हरकतों से, उसके मामलात से, उसकी आदात से अल्लाह का रंग नजर आता है। तो सिबगत अल्लाह क्या है असल में? सिबगत अल्लाह असल में ये है, अल्लाह का रंग कि जब वो चढ़ता है किसी पे तो उसको देख के अल्लाह याद आ जाता है। सहाबा सिबगत अल्लाह में रंगे हुए थे। और याद रखे, मैंने आपको जैसे बताया सिबगत अल्लाह नेचुरल नहीं होता कि जैसे हम नेचुरल एक रंग के साथ पैदा हों, सिबगत अल्लाह बाद में चढ़ाया जाता है। और देखिए, जब किसी चीज पे कोई रंग चढ़ गया हो ना तो वो चीज नोटिस होती है, नोटिसेबल होती है, आंखों को नजर आती है। उसको तो रंग चढ़ना नहीं कहेंगे ना, को कोई ये कहे कि रंग चढ़ा हुआ लेकिन वो आपको नजर ही नहीं आ रहा, ये तो नहीं होता ना। लेकिन हमारे यहां कहते हैं हम किसी को जज ना करें क्योंकि आपको क्या पता उसके अंदर कितनी नेकी हो, बाहर से अब वो चाहे जैसी मर्जी है। नहीं, अंदर का मामला अंदर है, मगर सिबगत अल्लाह जिस पे चढ़ता है ना वो नजर आता है। वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अंदर पता नहीं क्या है, उसकी नीयत बड़ी अच्छी है, उसकी ये है, बाहर कुछ नहीं नजर आ रहा, बाहर से फासिक फाजिर। और हम कहें नहीं नहीं वो है अंदर से बहुत नेक है। सिबगत अल्लाह जब चढ़ता है तो बाहर नजर आता है, और उसको देख के फिर इंसान को अल्लाह ही याद आ जाता है, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। हमें देख के भी क्या किसी को अल्लाह याद आता है? ये भी हमें सोचना चाहिए। हमें देख के क्या नजर आता है किसी को? कौन सा रंग नजर आता है? रंग तो बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना? कोई वेस्ट का रंग है, कोई ईस्ट का रंग है, कोई फलां का रंग है, कोई फलां का रंग है। हमें देख के लोग क्या देखते होंगे? खुद सोचें अपने आप को कि क्या देखते होंगे लोग, उनको क्या याद आता होगा। और याद रखें, अगर किसी चीज के ऊपर सही से आपने रंग चढ़ाना हो तो क्या करते हैं? एक तो सफेद कपड़े पे बहुत अच्छा रंग चढ़ता है, मसलन आप अपने दुपट्टे तो रंगवाती रहती होंगी, आपने रंगवाना हो तो फिर क्या करते? या तो सफेद रंग हो तो तब सही चढ़ेगा, या फिर क्या करना पड़ता है? अगर उस पर पहले से कोई रंग चढ़ाओ फिर उसी के ऊपर चढ़ा देती हैं? नहीं, उस रंग को पहले निकालना पड़ता है फिर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है, है ना? तो अगर आप अपने ऊपर सिबगतुल्लाह चढ़ाना चाहते हैं ना, अल्लाह का रंग, तो पहले जो रंग पे हमने चढ़ाए हुए अपने ऊपर, कोई भी रंग हो सकते हैं, गैरुल्लाह के बहुत सारे रंग हैं, तो वो पहले निकालने पड़ेंगे। टाई डाई नहीं हो सकता यहाँ पे, कहीं कहीं कोई रंग है तो कहीं कोई रंग है, सिबगत अल्लाह तो एक ही रंग है। और जरा सोचें भी कि हमने सूरह फातिहा से लेके जिन्होंने अभी तक हमारे साथ ये सफर किया, आज इंशाल्लाह हमारा ये पहला पारा मुकम्मल होगा, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं, 30 सीढ़ियां उनमें से पहली सीढ़ी पे आप कदम रख रहे हैं। तो ये बताएं कि क्या पिछले रंग में से कुछ रंग छटा, कुछ निकला बाद में? वो तो सिबगतुल्लाह तो बाद में चढ़ना है, ये जो पिछला रंग है वो भी कुछ हटाए कि नहीं हटा, वो हटेगा तो आप तैयार होंगे अल्लाह के रंग को चढ़ाने के लिए। क्या पिछली सोच में, क्या पिछले जो जैसे जिंदगी थी उसमें कुछ फर्क आया? कुछ अंदर टूट फूट हुई है कि नहीं? नया इंसान तो बंदा बाद में बनता है, लेकिन पहले जो अंदर ऑलरेडी गंदगी है, जो ऑलरेडी रंग चढ़े हुए हैं, वो निकले हैं कि नहीं, या कुछ फर्क ही आया है? तो देख ले, अब यहाँ पे जो सिबगत अल्लाह की बात हुई ना, बड़ी अहम बात है, क्योंकि सारा रुकू हमें अल्लाह के रंग में रंगने की तालीम दे रहा है। सहाबा का भी रंग वही था, वैसा ही ईमान हमारा चाहिए। तो हमें अल्लाह की इताअत का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, और क्योंकि अल्लाह का रंग, अब इसको इस तरह से ना लें, कोई नीला पीला ग्रीन ये नहीं सोचे, बस एक बात सोच लें, मुझे देख के लोगों को अल्लाह याद आ जाए। और कल जब अल्लाह ताला मुझे देखे तो उसको मेरे ऊपर प्यार आ जाए, बस। अगर हम वाकई चाहते ना कि जैसे अल्लाह ताला ने इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया, इस तरह हमें चुन ले, तो ये रंग चढ़ाना पड़ेगा। ये रंग अल्लाह को मतलूब है, ये अल्लाह की बंदगी का रंग है। तो देखिए सिबगत अल्लाह और अल्लाह के रंग से कौन ज्यादा, कौन सा बढ़ के रंग है? लेकिन आज क्या मुसलमान इस रंग को पसंद करते? ये रंग किसी पे चढ़ा हो मुसलमानों को पसंद आता? नहीं, अगर मुसलमानों को भी पसंद नहीं आता तो हम क्या किसी और का, वो तो बात को छोड़ेंगे, कोई और पसंद करेगा नहीं करेगा उसकी तो परवाह नहीं करनी चाहिए। मुसलमान क्या कहते हैं ऐसे रंग को देख के? एक्सट्रीमिस्ट है, इसको पागल है, मुल्लानी है, क्योंकि उसकी हरकत, उसकी मामलात, उसकी आदात, उसका हाल हुलिया सब अल्लाह के रंग में रंगा हुआ ना, इसलिए। वनहनु लहु आबिदून, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। इबादत, इस्लाम का माना क्या है? सबमिशन, इताअत। और इबादत का माना क्या है? इंतहाई तौर पे अपने आप को जब इंसान झुका दे, बिछा दे, और इंतहा दर्जे की मोहब्बत के साथ, तो उसको कहते हैं इबादत। इबादत में दो चीजें होती हैं। इस्लाम का माना तो सिर्फ इताअत है ना, लेकिन इबादत इताअत से भी बढ़ के है आगे। देखिए, आप किसी की इताअत कर सकते हैं जबकि आपका दिल भी नहीं चाह रहा, जबकि आपको उससे कोई मोहब्बत नहीं है, जबकि आप बस मारे बांधेगी कर रही हैं, लेकिन जो इबादत है ना, वो मारे बांधे की नहीं होती, वो मजबूरियों की नहीं होती, वो किस तरह से होती है? ऐसी इताअत जो शदीद मोहब्बत के जज्बे से की जाए, किसी से आपको इंतहाई मोहब्बत है ना, इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, जब आप उसकी बात को मानते हैं, उसको कहते हैं इबादत। आज इबादत का भी लफ्ज समझ लें, हम कहते हैं तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो इताहत को सिर्फ इबादत ना समझे कि मैंने उसका कहना मान लिया, कहना मान के उसके बाद फिर हसरतें करते रहते हैं, हाय हम तो बड़े अच्छे थे, वो दिन भी क्या थे जब मैं ऐसे घूमा करती थी, मैं ऐसे फिरा करती थी, मैं तो ये थी। और जब शदीद मोहब्बत के जज्बे से किसी की इताहत की जाए, तो क्या उसमें ऐसी हसरतें होंगी, ऐसे आंसू आएंगे, हाय वो दिन बड़े ही याद आते हैं, मैं तो अच्छी ही थी वैसे। जिसे आप बहुत शदीद मोहब्बत करते हो ना, और उसका कहना मानते हो, तो फिर देखें कि उसको रख के देखेंगे क्या क्या होती है फिर इबादत। कुल अतुहाजूनना फिल्लाही वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, कह दीजिए कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वो तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अब ये उनको कहा जा रहा है जो यहूदो नसारा थे कि तुम अल्लाह के बारे में मुझसे आर्ग्यू करते हो, उसके बारे में झगड़ते हो। झगड़ा किस बात का? हम दोनों का रब वही है, तुम भी तो उसी को मानते हो, तुम भी उसी को रब समझते हो। सोचो ना, एक गॉड को तो वो भी मानते हैं, चाहे ट्रिनिटी का भी जो अकीदा रखते हैं तो वो भी नाउज़ बिल्ला फादर सन होली गोस्ट इस तरह से वो भी बात करते हैं। वो यहूदी भी अल्लाह की जात को मानते हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का है जब हम एक खुदा को ही मानने वाले हैं। आज भी जब मुसलमान झगड़ते हैं आपस में, तो वो भी तो एक ही खुदा को मानने वाले हैं, फिर किस बात पे झगड़ते हैं? कोई दीन की तरफ आ जाए तो उससे कितना झगड़ते हैं, उस पर कितने इतराजात होते हैं। तो भाई तुम भी तो उसी अल्लाह को मानते हो, तो हम अगर उसी का कहना मान रहे हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो झगड़ा किस बात का है? किस चीज की प्रॉब्लम है? वला ना आमालू ना वलकुम आमालुकुम, और हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं। ठीक है, फिर हमने तो अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा लिया, और तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला ने सारी लिस्ट दे दी जराइम की, इन्होंने ये किए, तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, हमारा अमल हमारे साथ है, कोई किसी के अमल का जिम्मेदार नहीं है। वनाहनु लहू मुखलिसून, और हम उसी के लिए मुखलिस हैं। देखिए, पहले आया नहनु लहू मुस्लिमून, फिर आया नहनु लहू आबिदून, अब क्या आ रहा है? नहनु लहू मुखलिसून। क्योंकि ये मुस्लिम आबिद मुखलिस, ये तीनों चीज होंगी तो सिबगत अल्लाह चढ़ता है। इस्लाम, इबादत और इखलास, ये तीन दर्जे हैं, हाईएस्ट दर्जा है इखलास का। इखलास क्या चीज होती है? खालिस चीज जानते हैं ना, खालिस चीज। आप क्या खालिस चीज लेना चाहते हैं या खोटी? हमेशा हम चाहते हैं हमें खालिस चीज मिले, है ना। खोट किसी को भी पसंद नहीं है, इम्प्योरिटीज किसी को पसंद नहीं। कहते हैं प्योर चीज दिखाओ, प्योर कपड़ा, प्योर गोल्ड, प्योर हर चीज में प्योरिटी मांगते हैं। दूध भी खालिस ना हो तो पसंद नहीं आता। तो अल्लाह ताला के पास जो अकीदा और जो अमल भेजते हैं, सोचो उसमें कितनी इम्प्योरिटीज डाली हुई हैं। वो भी खालिस है या नहीं? वो भी प्योर है या नहीं? उस अकीदे में कितने सारे शिर्क हैं, और अमल में कितनी सारी रियाकारी है। खालिस तो नहीं हुए। इबादत में अगर इखलास नहीं है तो मुनाफकत है, ठीक है ना। और अकीदे में अगर इखलास नहीं है तो क्या है? शिर्क है। समझ आ गई इखलास का माना क्या है? सईद बिन जुबैर ने फरमाया, इखलास यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए और अपना अमल किसी को ना दिखाया जाए। और उज़ैफ़ अल मरअशी ने कहा है कि बंदे के अफ़आल का जाहिर और बातिन में बराबर होना इखलास है, कि जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। ये नहीं, बाहर और अंदर और। सहल कहते हैं अपने अमल को हकीर जानना, ये इखलास है। अबू सुलेमान अद-दुर्रानी कहते हैं कि रियाकार की तीन अलामात हैं, जब वो अकेला होता है तो इबादत से थक जाता है, और जब लोगों के दरमियान होता है तो फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है, जब इसकी तारीफ की जाए तो नेक अमल ज्यादा करता है। और इखलास रिया के ऑपोजिट है, बिलमुकाबिल है। ये तीन अलामतें हैं रियाकार की। अब आप देख लें हम अपने अमल में कितने मुखलिस हैं, कितना इखलास हमारे पास। क्योंकि मुखलिस लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, फरमाया मुखलिस लोगों के लिए खुशखबरी है, वही हिदायत के चिराग है, उनसे रोशनी फैलेगी, हर तारीख फितना उनसे छट जाता है। तो इखलास अल्लाह को चाहिए। हजरत मुआज़ बिन जबल जब यमन जा रहे थे تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو. دیکھیں ہم انسان, ہم تو انسان ہیں, کیا ہماری اوقات ہے, پھر بھی ہم اپنے لیے کوئی کھوٹ والی چیز پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ کھوٹی چیزیں قبول کر لیں ہماری. نہیں, وہ خالص کو قبول کرتا ہے. اور وہ کون سا ہوتا ہے خالص؟ جو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اگر کسی اور کی بھی خوشی اس میں شامل کر لی گئی نا, کہ چلو اللہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے, تو وہ عمل خالص نہیں رہتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی تھی, اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو, سمندر بڑا طوفانی ہے. سمندر کیا ہے؟ یہ دنیا سمندر ہے. تو اپنی کشتی اس میں اتنی مضبوط بنا لو اور عمل کافی سارے اکٹھے کر لو, سفر بہت لمبا ہے. دنیا کا بوجھ سر پہ تھوڑا رکھنا, چڑھائی بڑی دشوار ہے. وہاں پہ ایک ایک چیز کا سوال ہونا, ایک ایک چیز کا امتحان ہونا ہے. تو دنیا کا بوجھ کم ہوگا تو کوسچنز کم ہوں گے, دنیا کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا تو کوسچن زیادہ ہوں گے. اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص رکھنا, کیونکہ پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. سبحان اللہ, جس نے چیک کرنا ہے نا ہمارے عمل کو, اس کی نظر بڑی تیز ہے, اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں یہاں پہ تو ہم نے دھوکے دیے ہمیں نا, ایک دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں, میں بڑی نیک کر ہو گئی ہوں, میں بڑے اچھے کام کر رہی ہوں, میں یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں, اور اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پہ اللہ کو کیسے منائیں گے اگر اس عمل میں کھوٹ نکل آیا؟ اس کی نظر بہت تیز ہے, وہ جانتا ہے کہاں کہاں کھوٹ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو ان کی لکھی ہوئی نا لائف کے بارے میں بایوگرافی, تو اس میں لکھا کہ جب وہ کوئی خطبہ دیتے تھے یا کوئی تحریر لکھتے تھے اور اس کے متعلق دل میں ان کے غرور پیدا ہو جانے کا کوئی خطرہ پیدا ہو جاتا تو بولتے بولتے چپ ہو جاتے اور تحریر کو پھاڑ ڈالتے اور فرماتے, خدایا میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے دل میں بھی یہ کہیں خیال آ جائے اپنی بڑائی کا. تو دین میں خلوص کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں فخر اور غرور نہ کبھی آئے. جو لوگ واقعی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں نا, وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو بہت اہمیت دی جائے یا ان کی تعریفوں کے گن گائے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے جب ان کی تعریف کی جاتی تھی نا, تو فرماتے تھے مجھے جو حال اپنا پتا ہے نا, اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم میرے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھو, تاکہ لوگ ان کی تعریفیں نہ کریں. حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے, بہت بڑا نام ہے ان کا, لیکن وہ نا گمنام رہنے کو پسند کرتے تھے کہ کسی کو نہ میرا پتا چلے. ایک دفعہ کسی جگہ پہ پانی پینے کے لیے پہنچے, کوئی سبیل لگی ہوئی تھی, وہاں پہ اتنا رش تھا, لوگوں کی دھکم پیل تھی, تو وہ پانی پینے لگے تو کسی نے دھکا دیا اور دور جا کے گرے. تو واپسی میں اپنے ساتھی سے کہنے لگے, زندگی ہو تو ایسی ہو کہ نہ لوگ ہمیں پہچانے اور نہ ہمیں کوئی بڑی چیز سمجھے. سبحان اللہ, وہ کیسے لوگ تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں کوئی اہمیت نہ دے, ہمیں کوئی بڑی چیز نہ سمجھے. اور جب ان کا نا ایک شہر میں ایک بہت بڑا مکان تھا, تو لوگوں کے دل میں ان کی اتنی عقیدت پیدا ہو گئی تھی, اس مکان پہ ہر وقت ان کے اسٹوڈینٹس اور عقیدت مند ان کا رش لگا رہتا تھا. تو کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا, لیکن جب دیکھا کہ روز بروز لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, تو اس مکان کو چھوڑ کے ہی کوفہ چلے گئے. وہاں پہ جا کے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہنے لگے. تو دیکھیں ان سے پتہ چلتا ہے ان واقعات سے کہ اگر کوئی دین کی تھوڑی سی خدمت کر کے یہ ایکسپیکٹ کرے نا کہ اب میرا بہت احترام کیا جائے, مجھے بڑا تعریفیں کی جائے, مجھے بڑا کوئی منصب مل جائے, मुझे मुझे अब ये मेरे ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों से इसका बदला चाह रहे हैं। हालांकि इस चीज का, दीन का, की खिदमत का बदला किसी सूरत कोई इंसान दे ही नहीं सकता। हसन बसरी फरमाते हैं, जन्नत जैसी जगह वो भी तुम्हारे चंद रोजा अमाल का बदला नहीं है, बल्कि तुम्हारे इखलास का अजर है। ये अजर ही इखलास का है कि सिर्फ अल्लाह की खातिर किया जाए। और अगर किसी चीज में इखलास ना हो तो देखें, इतनी प्यारी मिसाल है हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने दी है कि लकड़ी की तलवार जो है ना, उससे कभी इंसान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। वो किस चीज के लिए होती है? चूल्हे में जलाई जाने के लिए। लकड़ी से अगर किसी ने एक तलवार बना ली है तो, है ना, क्या करेंगे उसे? लड़ तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे? चूल्हे में जलाई जा सकती है। फरमाया, यही हाल उन आमाल का है जिनमें इखलास ना हो, कि वो क्या होंगे? क्यामत के दिन इंसान के लिए डिफेंस नहीं बनेंगे, आग से बचाएंगे नहीं, वो आग में जलाने का उसको सबब बनेंगे। तो जिस चीज में इखलास हो, वो थोड़ी सी चीज भी बहुत बड़ी हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला मुनाजिल फरमाते हैं, बगैर दिखावे का एक सांस की बरकत भी आखिरत तक बाकी रहेगी, बगैर जो दिखावे जिसमें नहीं है। लेकिन अगर दिखावा है या कोई उसके अंदर अपनी बड़ाई की कोई बात है, तो याद रखें, यहाँ पे किसी को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, या हमें हम अपने आप को धोखे में रखे हैं कि हम बड़े खलूस के साथ काम कर रहे हैं। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि ऐ मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हुआ ना, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हुआ या आसमानों के अंदर हुआ या वो ज़मीन के अंदर हुआ, तब भी अल्लाह ताला उस दिन उसको ले आएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है, बाखबर है। तो अल्लाह से तो नहीं छुप सकते हैं जो नियतों के फतूर हैं, जो नियतों में इखलास ना होना है, जो रियाकारी है, ये सब अल्लाह से नहीं छुप सकती। जो इंसान के दिल के अंदर अपने आप को बड़ा बनाने की या अपनी तारीफें करवाने की या अपनी अहमियत जिताने की जो ख्वाहिश होती है ना, यही इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। और ख़ास तौर पे अगर दीन के मामले में हो, दीन फैलाने के, दीन के काम करने के मामले में हो, इसको तो यही सोचना चाहिए कि देखें, जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक कुआं खोदना है किसी को, एक ग्रोह को नाखूनों से मिट्टी खोद खोद के कुआं तैयार करना है, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर मुट्ठी भर मिट्टी किसी ने निकाली है, फिर वो फखर करने बैठ जाए कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि पूरे का पूरा कुआं अभी पड़ा हुआ है खुदने के लिए, सारी मुशक्कत जो अभी होनी है उसके मुकाबले में ये एक मुट्ठी बराबर मिट्टी तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह देखें, दुनिया की आबादी अरबों में है, उनमें मुसलमान कितने सारे हैं। अगर हम चंद एक मुसलमानों तक कोई दीन की बात पहुंचा देते हैं, तो अभी कितना काम करने वाला है। और अल्लाह का हक तो वो है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अगर हम अपनी जान तक दे देना, तब भी हक अदा नहीं होता। तो जब हक ही अदा नहीं हो रहा, तो फिर फख्र किस बात का? तो इंसान हमेशा इस चीज पे देखे कि मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, किस बात के ऊपर मैं फख्र करूं, किस बात पे बड़ा समझूं? हम छोटे छोटे काम करके जब उसमें इखलास ही नहीं रहता, तो वो भी जाया कर देते हैं। और पता नहीं, हम अल्लाह के पास जाएं तो उस वक्त हमारे पास कुछ होगा भी या नहीं होगा। अल्लाह ताला ने तो देखिए, इतना आसमानों में छुपी हुई, जमीन के अंदर किसी गार में भी छुपी हुई, अंदर पत्थर के भी कोई चीज हुई ना, वो भी ला देनी है, तो ये हमारे दिलों के खोट क्या सामने नहीं आ जाएंगे उस दिन? तो इसलिए हर वक्त दुआ भी करनी चाहिए इखलास के लिए, अपने हर वक्त अपनी नियतों को भी जांचते रहना चाहिए, हर वक्त अपने आप को ये याद दहानी कराते रहना चाहिए कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी मुझे बहुत करना है, मुझे अपने अंदर इखलास पैदा करना है। अपनी कोताहियों पे नजर ज्यादा होनी चाहिए, जो किया उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितने आप पीछे हैं उस पर ज्यादा सोचे, बजाय ये देखने के कि मैं कितने लोगों से आगे हूं। अम तकूलूना इन्ना इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक व याकूब व अस्बात, या तुम ये कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब व अस्बात और उनकी जो औलादें हैं, तुम कौन, यानी ये यहूद नसारा ये क्या कहते थे कि ये सारे जो है ना इब्राहिम इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी जो औलादे हैं वो कानु हूदन औ नसारा, वो यहूदी थे या ईसाई थे। देखिए कैसी एक बेवकूफाना बात है। हालांकि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हजारों साल पहले दुनिया से जा भी चुके, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, इसहाक अलैहिस्सलाम भी, याकूब अलैहिस्सलाम। यहूदी और नसरानियत तो बहुत बाद की पैदावार है। यहूदी किसके फॉलोअर है, मूसा अलैहिस्सलाम के, इन्होंने अपना नाम यहूदी रख लिया। ईसाई किसके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के। तो ये मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम तो बहुत बाद में आए इनकी औलादों में। तो अल्लाह ताला फरमाते कुल अंतुम आलम अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ज्यादा जानता है। तुम कैसी बातें करते हो कि वो यहूदी थे, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज हमारे यहां कहते हैं ना कि जो है ना बस आप किसी ना किसी फिरके को जरूर पकड़े। आप बताएं आप किस फिरके से हैं। अगर आप कह दें कि मैं बस मुसलमान हूं, नहीं नहीं ऐसे होने से कुछ नहीं। आप अपने आप को ये बताएं फिरका आपका कौन सा, क्योंकि फिरके के बगैर कुछ नहीं। तो इनसे अगर पूछा जाए कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फिरके से थे, या आपके सहाबा हनफी थे, शाफई थे, मालिकी थे, या इमाम अबू हनीफा क्या थे, वो बरेलवी थे, क्योंकि उन्हीं की आगे उसमें से बरेलवी भी हैं, देवबंद भी हैं। बरेलवी और ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान में ये दो मदरसे थे, एक बरेली में था और देवबंद भी यहीं के हैं हिंदुस्तान के, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट जब था। उनसे अब इतने आगे बढ़ गए कि अब वो कहते हैं मुसलमान होना वो इतनी बड़ी बात नहीं है, अब हमें अब बताएं कि फिरका आपका कौन सा। फिरका जब तक हमारा वाला नहीं है ना, उस वक्त तक आप हिदायत पे ही नहीं। ये तकसीम हमने कहां से कर ली। बिल्कुल वो लोग भी ऐसे ही कहते थे, कोई नई बातें नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम तो इन चीजों को देखें अपने यहां ये सब चीज देख चुके हैं। हमारे यहां फिरके के ऊपर ज्यादा जोर है, इस्लाम के ऊपर जोर नहीं है। तो अब ये एग्जैक्ट उसका यही जवाब है, वो तो बहुत पहले गुजर चुके, ये तो बहुत बाद में आए। तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह को ज्यादा पता है, ये बताओ। ये बताओ रे, डांट के है इनको। वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और कौन बड़ा जालिम है उससे जो छुपाए गवाही को जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से। इनके पास क्या गवाही थी, इनके पास ये गवाही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इनके पास ये गवाही थी, इनकी किताबों में बाकायदा निशानियां थी जिनको इन्होंने छुपाया हुआ था। तो ये तो तुम्हारे पास एक शहादत है, तुमने इसको छुपा लिया है। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है कि अल्लाह ने उसको एक गवाही दी है, एक बात उनके पास है, उनकी पोजेशन में है ये चीज, ये टेस्टिमनी है उनकी बुक्स में कि आखिरी नबी ऐसा होगा, यहां पे आएगा, फिर भी तुम इस गवाही को छुपा रहे हो। उन्होंने तो इस गवाही को छुपाया और हमने क्या किया, हमने भी एक तरह से छुपाया ही है कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा रहे किसी को दुनिया में। हम सिर्फ ये सोचते हैं ये हमारे रसूल हैं, उसके बाद अब अल्लाह ताला ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा, लेकिन क्या हम आज दुनिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। सिर्फ हम जागते कब है, अल्लाह माफ करे, जब वो कार्टून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन्होंने बनाए, थोड़ी देर के लिए उम्मत ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली, सोई भी उम्मत ने, और उसके बाद फिर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ किसने कराना है लोगों को, किसने इस शहादत को लोगों तक लेकर आना है। उन्होंने तो अपने जिम्मे जो काम था उन्होंने तो यहूदियों ने तो नहीं किया, और हम क्या हमारे जिम्मे जो काम है वो कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पैगाम के लिए जिंदगी में इतने मसाइब उठाए और जिसके लिए तड़पते रहे कि लोग इसको एक्सेप्ट कर लें, क्या हमारी भी वही तड़प है, हमारी कितनी तवज्जो है इसकी तरफ। वम अल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, याद रखो अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। तिलका उम्मतुन कद खलत, फिर वही बात आ गई, ये उम्मतें थीं पहले गुजर चुकी, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुमने कमाया। आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके रिश्तेदारों में कोई कोई कितना ही नेक हो, आपको फ़ायदा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका अमल सुस्त है, यानी उसका अमल पीछे है, उसका नसब उसको आगे नहीं ले जा सकता। अमल यानी अगर आपका आप पास अमल नहीं है ना, तो नसब ने आपको आगे नहीं ले जाना, या आपका जो फैमिली ट्री है उसकी वजह से आप आगे नहीं चले जाएंगे। याद रखिए मिसाल नूह अलैहि सलाम के बेटे की, पैगंबर के बेटे हैं, और हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जिंदगी रही तो कि कैसे डूब रहा है बेटा और बाप की तड़प भी है, लेकिन लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो जो उसने किया, तुम्हारे लिए जो तुमने किया। नूह अलैहि सलाम का अमल उनके बेटे को नहीं बचा सका, नूह अलैहि सलाम की नबूवत ने उनके बेटे को नहीं बचाया। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अबू लहब को नहीं बचा सकती। तो वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे इसके बारे में जो वो अमल करते थे। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं उनके अमल की, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। लिहाजा उनके अमल की फिक्र करने की बजाय अपने अमल की फिक्र करो। देखिए हमें क्या बता रहा है ये सारा रुकू जो हमने पढ़ा है, अमल अमल अमल, हमारे साथ हमारे अमल ने जाना है, दूसरों के अमल पे हर वक्त नजर लगा के बैठ रहना, फलाना ये कर रहा है फलाना वो कर रहा है, ओहो उनके अमल का तुमसे नहीं पूछा जाना। तुम अपने अमल की तो फिक्र करो पहले, हमारी अपने ऊपर नजर नहीं होती, दूसरों के अमल के ऊपर ज्यादा नजर होती है। उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास होती है कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हमें इतनी फिक्र अपनी भी है? तो बहुत सारी चीजें आज की इसमें खास तौर पे सिबगत अल्लाह को मैं कहूंगी कि इसके ऊपर जरूर एनालाइज करिएगा। देखें जिसके ऊपर जो जब इंसान के ऊपर किसी का रंग चढ़ता है ना, तो पता चल जाता है। हम कहते हैं ना इसके ऊपर ना उन लोगों का रंग चढ़ा हुआ है, उनके साथ रहती है ना उनका रंग चढ़ा हुआ है, इसकी कंपनी का रंग चढ़ा हुआ है, जो ऐसी जिस माहौल में जिन लोगों के अंदर ये उठती बैठती है। हम किसी को कहते हैं इसके ऊपर वेस्ट का रंग चढ़ा हुआ है ना, तो इंसान के ऊपर जिसका रंग चढ़ता है पता चल जाता है। कई लोगों को पैसा नया नया मिलता है तो उनके भी रंग ढंग बदल जाते हैं, उनके ऊपर उसका रंग चढ़ जाता है। इंसान के बिल्कुल तौर तरीके रंग ढंग, कई लोगों की लड़कियों की शादियां होती हैं जब, तो उनके तौर तरीके और बोलचाल ही बदल जाती है कि अब शादी हो गई हम पढ़ते नहीं कितनी बड़ी चीज बन गए। तो कहने का मकसद यह है कि जब किसी चीज का रंग चढ़ता है नोटिसेबल होता है, पता चलता है हम पे क्या रंग चढ़ा हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो अल्लाह का रंग तो अल्लाह की गुलामी इख्तियार करने से चढ़ता है ना, दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करने से अल्लाह का रंग तो नहीं चढ़ेगा। तुम्हारी जिंदगियों में किसका रंग नजर आ रहा है, किसका रंग झलक रहा है, जरूर अपना जायजा लीजिएगा। और हम अपने अमल पे हर एक गौर करें, और इसमें खास तौर पे इखलास पे, अगर अल्लाह का रंग चढ़ाना है तो इखलास होना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको सिबगतुल्लाह में रंग दे और हमें कबूल कर ले अपने यहाँ। अल्लाह ताला जो हमने ये मंजिल आज तय की है, अल्लाह ताला हमारा एक एक लम्हा जो हम इस क्लास में बैठे हैं सीखने में, जो भी हमने मुशक्कत उठाई या जो मेहनत की, जिस जिस लोगों ने जिस तरह से कोशिशें की, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल और मंजूर फरमाए, उनके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनको साबित कदमी अता फरमाए जो भी इस रास्ते की तरफ आए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रंग चढ़ा दे और बाकी सारे रंग हमारे ऊपर से धो डालना। या अल्लाह ताला जो इस सफ़र में हमारे साथी बने इनको आखिर तक हमारे कुरान के सारे सफर में हमारे साथ रखना, सेहत के साथ, आफियत के साथ, घरों घर वालों की और घरों में सलामती के साथ अल्लाह ताला हमारे साथ इस सफर में शरीक रखना। या अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज रखना, हमारे नफ्स की शरारतों से महफूज रखना, हमारे आमाल को रियाकारी से और या अल्लाह आलाइशों से महफूज रखना। या अल्लाह ताला हमारे अंदर इखलास पैदा फरमा ले, अल्लाह हमारे अंदर इखलास पैदा फरमा ले, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया था, अल्लाह हमें भी अपने दीन के लिए चुन लेना। या अल्लाह अपने दीन की बेहतरीन खिदमत हम सबसे ले लेना। या अल्लाह जो पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा देना। या अल्लाह ताला हमारे हक में इसको हुज्जत बना देना क़यामत के दिन। या अल्लाह हम वो रंग तेरे पास लेकर आएं कि जब हम तेरे सामने खड़े हों तो तू हमें पसंद कर ले। अल्लाह वो रंग हमारे ऊपर चढ़ा दे जो तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल और मंजूर फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत चलो इंशाल्लाह।
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون